السلام علیکم، یہ پارٹ 7 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کنول خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7. اور اس نے ان ٹینکروں کو 20 کیمپ میں روک لیا، ہم کیا کریں گے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. ان سب کے لیے مائک اور ہیڈ فون چونکہ لینکڈ تھے، اس لیے وہ سب ایک دوسرے کی باتیں سن بھی سکتے تھے اور جواب بھی دے سکتے تھے. ہمارے پاس اسلحہ ہے، اگر کرنل ہیمر نے ٹینکر روکنے کی کوشش کی تو ہم ٹینکر سے نکل کر اس کے 20 کیمپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، عمران کے بجائے تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا. اور اگر وہاں کوئی اینٹ نہ ہوئی تو کیا بجاؤ گے؟ عمران نے کہا اور وہ سب بے اختیار ہنس پڑے. تمہارا سر، تنویر نے چڑ کر جواب دیا. ارے سر بھی کوئی بجانے کی چیز ہے، اگر تمہیں بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی بہن کی شادی کر دو، پھر جی بھر کر ڈھول بجا لینا. اینٹ سے اینٹ بجانے اور سر بجانے سے زیادہ آواز ڈھول کی ہوتی ہے، اور ڈھول کی تال اچھی ہوتی ہے تو لوگ اس پر بھنگڑے بھی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں جولیا؟ عمران نے کہا. مجھے نہیں معلوم، جولیا نے چڑ کر کہا. او ہاں، میری طرح تمہاری بھی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بھلا تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ڈھول کیا ہوتا ہے اور بھنگڑا کیا ہوتا ہے؟ چلو ایک بار تمہاری شادی شروع ہو جائے، پھر سب ممبران مل کر بھنگڑا ڈالیں گے. کیوں ساتھیوں، ڈالو گے نا میری شادی پر بھنگڑا؟ عمران نے بڑی چلاکی سے جولیا اور اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے کہا، اور وہ سب ہنسنے لگے. اور تم کس سے شادی کرو گے؟ جولیا کی کاٹ دار آواز سنائی دی، جیسے وہ عمران کے الفاظوں کے ہیر پھیر کو نہ سمجھ سکی ہو. لو یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں جسے پسند کرتا ہوں اس کے بارے میں کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن تنویر دی گریٹ ضرور جانتا ہے. کیوں تنویر، جانتے ہو نا؟ عمران نے کہا، اور ہیڈ فون میں انہیں تنویر کی گنراہٹ بھری آواز سنائی دی. اب اگر تم میرا نام اپنی زبان پر لائے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، تنویر نے ہرا کر کہا. ارے ارے یہ غضب نہ کرنا، ہم تیل سے بھرے ہوئے ٹینکر میں موجود ہیں، اگر تم نے گولی چلائی تو اس کا نشانہ میں بنوں یا نہ بنوں، اس تیل میں آگ ضرور لگ جائے گی اور تمہارے ساتھ ساتھ سب اسی ٹینکر میں جل بھن کر رہ جائیں گے، اور اس قدر جل بھن جائیں گے کہ کوئی ہمیں کباب سمجھ کر کھانا تو درکنار چکنا بھی گوارا نہیں کرے گا، عمران نے کہا. اور وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے. آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، صفدر نے عمران اور تنویر کی گرما گرمی سن کر بات بدلتے ہوئے کہا. کس بات کا؟ عمران نے پوچھا. یہی کہ اگر کرنل ہیمر نے کسی بھی شک کی بنیاد پر ٹینکر اسرائیل نہ جانے دیا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹینکر واپس اوغان بھیج دیں، صفدر نے پوچھا. کرنا کیا ہے، سب اسی طرح تیل میں بیٹھے سرد آہیں بھرتے رہیں گے اور کرنل ہیمر کو بد دعائیں دیتے رہیں گے، اس سے بھی کام نہ چلا، اور اگر زیادہ غصہ آیا تو ہم سب تنویر کی بات پر عمل کر کے باہر نکلیں گے اور کرنل ہیمر کے سر پر ایسا ہتھوڑا ماریں گے کہ اس کی ساری بدمزاجی اور سارا اکھڑپن اس کی ناک کے راستے باہر آ جائے، تو پھر اس کی کیا مجال ہوگی کہ وہ ہمیں اسرائیل نہ جانے دے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. یہ سب کرنے کے لیے ہمیں اس ٹینکر سے باہر نکلنا ہوگا. ہم جب ٹینکر میں آئے تھے تو ٹینکر خالی تھا، ہمارے اندر آنے کے بعد ٹینکر میں تیل بھرا گیا تھا. اب بھی ہم ٹینکر سے تب ہی باہر نکل سکتے ہیں جب اس ٹینکر کو تیل سے خالی کر لیا جائے، جولیا نے کہا. یہ کون سا مشکل ہے، تم کہو تو میں ابھی ٹینکر خالی کر دیتا ہوں، عمران نے اسی انداز میں کہا. وہ کیسے، جولیا نے چونک کر پوچھا. میں ٹینکر کے آخر سرے پر ہوں، میرے قریب ہی فلو اوور موجود ہے، اس فلو اوور کو اندر اور باہر دونوں طرف سے کھولا جا سکتا ہے، اگر میں چاہوں تو तो इसे भी खोल सकता हूँ। फ्लोवर के खुलते ही टैंकर का सारा तेल बाहर निकल जाएगा, फिर ना तेल रहेगा और ना तेल की धार, इमरान ने कहा। इसके बाद क्या होगा? तेल बाहर गिरते देखकर वो चौक नहीं पड़ेंगे। फ्लोवर अगर बाहर से ना रुका तो वो अंदर लोग आ जाएंगे और फिर हम लाख कोशिश कर लें तब भी इनकी नजरों से छुपे नहीं रह सकेंगे, जूलिया ने कहा। ऐसा नहीं होगा, कोई ऑयल टैंकर में आसानी से नहीं उतर सकता। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा, हम टैंकर के अंदर ही इनको काबू कर लेंगे और इनके लिबास पहनकर आसानी से बाहर निकल जाएंगे, इमरान ने कहा। यह सब इतना आसान नहीं होगा, सिद्दीकी ने कहा। आसान नहीं तो मुश्किल तो होगा ना, और हम परदेशियों को तो वैसे भी मुश्किलों से ही नबरो आजमा होना पड़ता है। वो क्या कहते हैं? हाँ याद आया, मुश्किलों से घबरा जाए ए ऑयल टैंकर हम वो नहीं, इमरान ने कहा और वो सब हंस दिए। मुश्किलों से घबरा जाए ए आसमां हम वो नहीं, ये मुहावरा होता है, ऑयल टैंकर नहीं, खावर ने हंसते हुए कहा। आसमान कहाँ है हमारे सरों पर, हम तो तेल में डूबे हुए हैं। इंसान मरने के बाद कब्र की तारीकी में जाता है और हम जिंदा होते हुए और कब्र में ना होते हुए भी ऑयल की तारीकी में बैठे हुए हैं। ना हमें दिन का पता है ना रात का। इस टैंकर को जिस कदर झटके लग रहे हैं इससे तो हमारी हड्डियों का भी कचूमर बनता जा रहा है। मैं तो ये सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि हम इसराइल अपनी सलामत हड्डियाँ लेकर पहुँच भी सकेंगे या नहीं, इमरान ने एक सर्द आह भर कर कहा। हाँ वाकई हमारा सफर भी खासा तवील हो गया है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और हमारी थकावट भी बढ़ती जा रही है, चौहान ने कहा। मुझे तो यही लग रहा है कि ये टैंकर अब सरहद के करीब जाकर ही रुकेगा, नौमानी ने कहा। चलो कहीं तो रुकेगा, अगर ये सारी उम्र इसी तरह चलता रहा तो हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं, इमरान ने कहा। किन का? कैप्टन शकील ने बेख्तियार पूछा। टैंकरों का और किन का, इमरान ने मुंह बनाकर कहा और वो सब एक बार फिर हंसिए। इमरान ने टैंकर के बाहर एक माइक्रो माइक लगाया हुआ था जो इन सबके हेडफोन से लंकित था। जिस तरह वो सब एक दूसरे की बातें सुन सकते थे इसी तरह टैंकर के बाहर लगे हुए माइक से आने वाली आवाजें भी वो बाखूबी सुन सकते थे और इन्हें इस वक्त जाहिर है टैंकरों के इंजनों के शोर के सिवा और क्या सुनाई दे सकता था। टैंकर इसी तरह मजीद तकरीबन 2 घंटों तक दौड़ते रहे, फिर इनकी रफ्तार कम होना शुरू हो गई। लगता है हम चेक पोस्ट के नजदीक पहुंच गए हैं, इमरान ने कहा। हाँ टैंकर की रफ्तार कम होना शुरू हो गई है और टैंकर को हल्के हल्के झटके लग रहे हैं, जिससे अंदाजा हो रहा है कि इस टैंकर को सड़क की साइड पर उतारा जा रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। चंद ही लम्हों के बाद टैंकर रुक गया और फिर टैंकर का इंजन बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद इन्हें बाहर से भारी बूटों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसका मतलब वाजह था कि इसराइली चेक पोस्ट के फौजी इन टैंकरों की चेकिंग के लिए आ रहे हैं। इनके पास 2 आलात हैं, क्या इन आलात से वो तेल के अंदर भी झांक सकते हैं, जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। हाँ इमरान ने जवाब दिया। ओ तो क्या इन्हें इस टैंकर में हमारी मौजूदगी का इल्म हो नहीं होगा, जूलिया ने मुतफकराना लहजे में कहा। नहीं, हमने जो लिबास पहन रखे हैं इनसे हम तेल के असरात से महफूज रहने के साथ साथ हर किस्म के रेजर से भी महफूज रह सकते हैं। ऑयल को अंदर से चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड और थर्मोमोलिट रेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तेल में छुपे हुए एक कंकर का भी पता लगाया जा सकता है और ये भी पता लगाया जाता है कि तेल में क्या क्या मिलाया गया है। हमने जो लिबास पहन रखे हैं, ये लिबास इन रेजर्स को भी दाज दे सकती है और चूंकि हमारे लिबास तेल में भीगे हुए हैं, इसलिए इन रेजर्स से हमारी मौजूदगी का किसी को कुछ इल्म नहीं होगा। अगर हम इन मखसूस लिबासों में ना होते तो अल्ट्रासाउंड और दूसरी रेजर्स से हमारी रगों में चलते हुए खून और दिलों की धड़कनें की आवाजें भी इन तक पहुंच सकती थीं। और अगर हम इसी तरह से बोलते रहे तो हमारी आवाजें अल्ट्रासाउंड सिस्टम से चेक हो जाएंगी या फिर हमारे हृदय जोने की आवाजें इन तक पहुंच जाएंगी। इसलिए अब हम सब न सिर्फ खामोश रहेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि अपनी जगहों से एक इंच भी इधर उधर ना हिलें, बल्कि कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा अपनी सांस रोके रखना ताकि इन्हें किसी भी तरह हमारी यहाँ मौजूदगी का पता ना चल सके, इमरान ने कहा। ठीक है, इन सब ने कहा और फिर वो खामोश हो गए और इन्होंने बाहर की आवाजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बाहर बेशुमार भारी बूटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और इसराइली फौज आयल टैंकर लाने वाले अफराद से बड़े सख्त अंदाज में पूछ गछ कर रहे थे। इसके बाद कुछ फौजियों ने जैसे टैंकरों को ठोक बजाकर चेक करना शुरू किया और फिर इन्होंने एक आवाज सुनी जो फौजियों को तमाम टैंकरों को अल्ट्रासाउंड और थर्मोमोलिट लेजिस से चेक करने का हुक्म दे रहा था। फिर इन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जिसे टैंकर पर मुख्तलिफ किस्म के आलात लगाए जा रहे हैं। इमरान के कहने पर उन्होंने पहले ही बातचीत तर्क कर रखी थी। बाहर की आवाजें सुनकर उन्होंने अपनी सांसें भी रोक ली थी और यूं साख्त होकर बैठ गए थे जैसे बेजान बुत हों। टैंकरों को काफी देर तक इसी तरह से चेक किया जाता रहा, फिर वो घंटों के बाद इन्हें क्लियर करा देकर चेक पोस्ट से गुजरने के अहकाम दिए गए तो इनके रुके हुए साइंस जैसे बहाल हो गए। जदीद साइंसी आलात से चेकिंग के बावजूद इन फौजियों को अल टैंकर में न इनकी मौजूदगी का पता चला और न ही वो लोग असले से भरे हुए थैलों के बारे में कुछ जान सके थे। थोड़ी ही देर में टैंकर एक बार फिर हरकत में आ गया। असल मरहला अब शुरू होगा जब इस आयल टैंकर को 20 कैंप में ले जाया जाएगा। अगर कर्नल हैमर ना हुआ तो ये आयल टैंकर इसराइल भेज दिया जाएगा, वरना हमें कर्नल हैमर के हुक्म तक 20 कैंप में इसी तरह इस आयल टैंकर में ही रहना होगा, इमरान ने कहा और वो सब तवील सांसें लेकर रह गए। इन सबके दिलों से यही दुआएं निकल रही थी कि कर्नल हैमर वहां ना हो, वरना न जाने कब तक इन्हें इसी तरह तेल में ही रहना पड़े। कर्नल हैमर का कोई भरोसा नहीं था कि वो टैंकर 20 कैंप में ही रुके रखता। इसका दिमाग अगर किसी बात पर अड़ जाता तो वो टैंकर वापस अफगान में भेज सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो इनका ये तवील और थका देने वाला सफर महज सफर बनकर ही रह जाता और फिर इन्हें नए सिरे से इसराइल में दाखिल होने की कोशिशें करनी पड़ती जिसके लिए न जाने इन्हें किन किन मसाइब का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए वो मुसलसल दुआएं मांग रहे थे कि इनका ये सफर बाखैर आफियत खत्म हो जाए। एक बार वो इसराइल में दाखिल हो जाते फिर इन्हें सिर्फ अपने टारगेट का तक पहुँचने के लिए ही तवद्दो करनी थी, वरना इसराइल में दाखिल होने में ही इन्हें न जाने कितना वक्त लग जाता और तब तक ब्लैक हार्ट एजेंसी इन तमाम फाइलों को डिकोड कर लेती जिससे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी यकीनी थी और वो सब हर सूरत में पाकिस्तान को तबाही और बदनामी से बचाना चाहते थे। इनका अजम ठोस चट्टानों जैसा था जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, कतई नामुमकिन। टैंकर नहायत आहिस्ता रवि से चल रहे थे, हर तरफ से मुसलसल दौड़ने भागने की आवाजें सुनाई दे रही थी और टैंकर जिन रास्तों पर जा रहा था इन्हें यूं लग रहा था जैसे इसे किसी नशीबी इलाके की तरफ ले जाया जा रहा हो। जो जो टैंकर आगे बढ़ता जा रहा था इनके दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। कर्नल हैमर एक बड़े से खेमे में मेज के पीछे एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके सामने चंद फाइलें पड़ी हुई थीं, जिनमें से वो एक एक फाइल उठाकर इन्हें नहायत बारीक बीनी से चेक कर रहा था और फिर मुकम्मल फाइल पढ़ने के बाद फाइल के आखिर में लगे हुए एक अलग पेपर पर वो दस्तखत कर रहा था। दस्तखत शुदा फाइल को वो बड़ी नाकदरी से मेज की दाएं तरफ नीचे पड़ी हुई एक बास्केट में उछाल देता था। اس کے سامنے پڑی ہوئی تمام فائلیں مختلف نوعیت کے سامنے کی تھیں جو سرحدی علاقے سے اسرائیل میں لایا جاتا تھا. ان فائلوں میں بیرون ملک سے آنے والی ایک ایک چیز کی تفصیل درج ہوتی تھی, جس میں تمام سامان کا معیار, کوانٹیٹی اور ویلیو کو اس کی مخصوص ٹیم نے جانچا ہوتا تھا اور چیکنگ کی رپورٹ بنا کر فائل کرنل ہیمر کو این او سی کے لیے بھیج دی جاتی تھی. کرنل ہیمر جہاں سخت جیر, اکھڑ اور بدمزاج تھا, وہاں وہ اصولوں کا بھی پکا انسان تھا اور اپنے کام کو وہ پوری تندہی اور جان فشانی سے سر انجام دیتا تھا. وہ جس بیس کیمپ یا سرحدی چیک پوسٹ پر جاتا تھا, وہاں سے ملنے والی رپورٹ کے ایک ایک حصے کو بغور دیکھتا تھا اور جہاں اسے ضرورت پڑتی تھی وہ باہر جا کر دوسرے ممالک سے آنے والے تمام سامان کی خود بھی چیکنگ کرتا تھا, اور جب اسے تسلی ہو جاتی تھی تو وہ متعلقہ سامان کو اسرائیل لے جانے کے لیے این او سی جاری کر دیتا تھا, ورنہ سامان واقعی کئی کئی روز وہیں پڑا سڑتا رہتا تھا یا پھر سامان سے بھرے ہوئے ٹرک اور کنٹینروں کو اسی طرح سے واپس بھیج دیا جاتا تھا, چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو. کرنل ہیمر اپنے اصولوں اور اپنے فیصلوں پر سختی سے کاربند تھا اور وہاں اس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. کرنل ہیمر اس وقت اوگانی چیک پوسٹ پر ہی موجود تھا, جہاں وہ اپنے مخصوص ہیلی کاپٹر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا. بیس کیمپ کے انچارج میجر ٹام نے اوگان سے آنے والے آئل ٹینکروں, کنٹینروں اور ٹرکوں میں آنے والے تمام سامان کی فائلیں لا کر اسے دے دی تھی, جسے کرنل ہیمر ایک مخصوص خیمے میں بیٹھا چیک کر رہا تھا. ابھی کرنل ہیمر ایک فائل کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے ایک پختہ عمر کا فوجی اندر داخل ہوا اور اس نے زمین پر زور سے ایڑی مار کر نہایت مودوانہ انداز میں کرنل ہیمر کو سلوٹ کیا. اس کی ایڑی مارنے کی آواز سن کر کرنل ہیمر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. آنے والا بیس کیمپ کا انچارج میجر ٹام تھا. اس کے ہاتھ میں مزید فائلیں تھی. یس میجر ٹام, کس لیے آئے ہو؟ کرنل ہیمر نے اسے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ فائل پر سر جھکاتے ہوئے کہا. اس کے نیجے میں بے پناہ سختی کا انصر تھا. سر, ڈی آئی سی کی مزید 20 آئل ٹینکر آئے ہیں, میجر ٹام نے مودوانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا, اور اس نے ہاتھوں میں موجود فائلیں نہایت مودوانہ انداز میں کرنل ہیمر کے سامنے رکھ دی. پہلے کتنے ٹینکر آئے تھے؟ کرنل ہیمر نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا. یہ ان کی آخری کیمپ کے 20 آئل ٹینکر ہیں جناب. پہلے 30 آئل ٹینکر آ چکے ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے ہی آگے بھیج دیے گئے تھے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آج آنے والے ہیں تو میں, میجر ٹام نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا تم نے ان تمام آئل ٹینکروں کی چیکنگ کر لی ہے؟ کرنل ہیمر نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا. یس سر, تمام ٹینکروں کی میں نے خود چیکنگ کی ہے. خام تیل ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے اور اس کو کوانٹیٹی بھی پوری ہے. لیکن میجر ٹام کہتے کہتے رک گیا اور اس کے منہ سے لیکن کا سن کر کرنل ہیمر بے اختیار چونک کر اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا. لیکن لیکن کیا؟ کرنل ہیمر نے دشت لہجے میں پوچھا. سر, ان میں سے ایک ٹینکر نے مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ٹینکر کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں, میجر ٹام نے جھجکتے جھجکتے کہا. کیا مطلب کیا الجھن ہے اور تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کرنل ہیمر نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا. ان 20 آئل ٹینکروں میں ایک آئل ٹینکر ایسا ہے جناب جس کی چیکنگ میں مجھے کچھ گڑبڑ سی محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ اس آئل ٹینکر میں موجود خام تیل کی پوری کوانٹیٹی ہے اور تیل بھی اعلیٰ معیار اور بغیر کسی ملاوٹ کا ہے. بظاہر اس میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن میجر ٹام پھر کہتے کہتے لیکن پر اٹک گیا, جسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کرنل ہیمر کو کیا بتائے. پھر وہی بات, یہ تم بار بار بولتے بولتے لیکن پر کیوں اٹک رہے ہو؟ نانسنس, تم तुम जानते हो मुझे अधूरी और कच्ची पक्की बातों से सख्त नफरत है, इसके बावजूद तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हो, कर्नल हेमंत ने गुस्से लहजे में कहा। सच सच सॉरी सर, वो बात असल में ये है कि मैं जब ऑयल टैंकर में मौजूद तेल को मापता हूँ तो इसकी पैमाइश में कोई कमी नजर नहीं आती। तेल के मायार को ऑयल टैंकर से बाहर निकाल कर चेक करता हूँ तो मुझे इसमें भी कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन जब इसी तेल का मायार में ऑयल टैंकर के अंदर से जांचने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तेल में कुछ मिला हुआ हो। मैंने बार बार इस तेल को चेक किया है, बाहर निकाल कर अलग से चेक किए जाने वाले तेल का मायार और होता है और ऑयल टैंकर के अंदर थर्मोलेट रेजिस से चेक करता हूँ तो ऑयल टैंकर के अंदर मौजूद तेल का मायार कुछ और ही नजर आता है, जैसे तेल में कुछ मिला हुआ हो। मेजर टॉम ने परेशानी के आलम में कहा और कर्नल हैमर के चेहरे पर हैरत के तासर लहराने लगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि तेल का मायार बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और, कर्नल हेमंत ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, मेजर टॉम ने कहा। थर्मोलेट सिस्टम इस ऑयल टैंकर के अंदर मौजूद तेल के बारे में क्या काशन दे रहा है, कर्नल हेमंत ने चंद में सोचने के बाद पूछा। थर्मोलेट रेजिस से ऑयल टैंकर में ठोस चीजों की मौजूदगी का पता चल रहा है। मैंने इन चीजों को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड समेत चार मुख्तलिफ रेजिस का इस्तेमाल भी किया है जनाब, लेकिन तेल में बाज़ाहिर कोई मिलावट नजर नहीं आ रही और ऑयल टैंकर में तेल के सिवा कुछ भी नहीं है। हालांकि अल्ट्रासाउंड और थर्मोलेट रेजिस की चेकिंग से टैंकर में मौजूद एक मामूली सी कंकरी का भी आसानी से पता चलाया जा सकता है, मेजर ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर थर्मोलेट इस ऑयल टैंकर में किसी ठोस चीज की मौजूदगी का काशन क्यों दे रहा है, कर्नल हेमंत ने इसकी तरफ तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। पता नहीं जनाब, मैं खुद भी परेशान हूँ। मैंने ऑयल टैंकर की चेकिंग के लिए एक आदमी को भी मखसूस लिबास पहना कर ऑयल टैंकर के अंदर उतार दिया था। इसने गहराई तक जाकर तेल चेक किया था। इसके पास स्टार रॉड भी था जिससे वो तेल भी छुपे हुए छोटे से छोटे पत्थर को भी ढूंढ कर ला सकता है, लेकिन इसे भी अंदर कुछ नहीं मिला था। मेजर टॉम ने इसी तरह से परेशान लहजे में जवाब दिया। ओ, अब वो टैंकर कहाँ है, कर्नल हेमंत ने पूछा। मैंने इसे दूसरे टैंकरों से अलग कर दिया है, मेजर टॉम ने कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं खुद इस टैंकर को चेक करता हूँ, कर्नल हेमंत ने सामने पड़ी हुई फाइल बंद करते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। वो मेज के पीछे से निकला और फिर वो मेजर टॉम के साथ खैमे से निकल आया। वसी और इस इलाके तक फैले हुए 20 कैंप के चारों अतराफ बाढ़ लगी हुई थी और वहाँ जगह जगह लकड़ियों के केबिन दिखाई दे रहे थे। कैंप में चारों अतराफ ऊंचे ऊंचे सर्च टावर बने हुए थे जिनमें से चार कैंप के चारों कोनों पर थे, एक एक कैंप के किनारों के दरमियाने हिस्सों में, और एक सर्च टावर कैंप के एन वस्त में बनाया गया था। वहां टोटल 9 सर्च टावर थे जिनसे कैंप के चारों अतराफ आसानी से नजर रखी जा सकती थी। कैंप में फौजी वर्दियों में मुलविस इसराइली मौजूद थे। वहां फौजी गाड़ियों और फौजी ट्रकों के साथ बख्तर बंद गाड़ियां और टैंक भी दिखाई दे रहे थे। दाएं तरफ एक एयर बेस बना हुआ था जहां 4 जंगी तैयारे और 8 गन शॉप हेलीकॉप्टर खड़े थे, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर को बुरा हेलीकॉप्टर थे, 4 अपाचे और 2 हेलीकॉप्टर शनोई थे जिनके डबल होटल होते हैं। खेमे के बाहर एक जीप खड़ी थी जिसमें ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान ड्राइवर बैठा हुआ था। कर्नल हेमा को खेमे से बाहर निकलते देखकर इसने फौरन जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया। कर्नल हेमा इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया जबकि मेजर टॉम जीप के अकब में आ गया। स्टॉक एरिया की तरफ चलो, मेजर टॉम ने ड्राइवर से कहा। तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाकर जीप आगे बढ़ा दी। जीप तेजी से कैंप में बने मुख्तलिफ रास्तों से दौड़ती हुई कैंप से बाहर आ गई। दाएं तरफ एक छोटा सा टीला था, जिसके दाएं तरफ ही एक बड़ी मगर कच्ची सड़क नशीब की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। ड्राइवर जीप नशीबी इलाके की तरफ ले गया। दूसरी तरफ एक खुला मैदान था, जहां हर तरफ बड़े बड़े ट्रक कंटेनर और आयल टैंकरों के साथ छोटी बड़ी माल बरदार गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी। वहां भी हर तरफ मुसल्ला फौजी फैले हुए थे। ये वो गाड़ियां थीं जो मुख्तलिफ ममालिक से बजरिए सड़क सामान लेकर इसराइल जाने के लिए आई थी और कई रोज से कर्नल हैमर की शक की वजह से वहीं रुकी हुई थी। जब तक इन गाड़ियों को कर्नल हैमर की तरफ से एनओसी नहीं मिल जाता था, इनमें से किसी गाड़ी को इसराइल जाने नहीं दिया जाता था। तमाम गाड़ियों को इनके तनासुब के लिहाज से अलग अलग रखा गया था। एक तरफ अगर कंटेनर थे तो दूसरी तरफ ट्रक। इसी तरह दूसरी माल बरदार गाड़ियां भी अपने तनासुब के लिहाज से अलग अलग खड़ी की गई थीं। मेजर टॉम के कहने पर ड्राइवर जीप को दाएं तरफ जाने वाली एक दूसरी सड़क पर ले आया। वहां एक और पहाड़ी थी, जिसके पीछे एक और मैदान था। वो मैदान ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल वहां 20 से ज्यादा आयल टैंकरों और 10 से ज्यादा कंटेनरों को एक साथ खड़ा किया जा सकता था। इस वक्त इस मैदान में सिर्फ एक बड़ा आयल टैंकर मौजूद था। टैंकर के पास 4 मुसल्ला फौजी खड़े थे, जो इस टैंकर की निगरानी पर मामूर थे। जीप इस टैंकर के पास जाकर रुकी तो वहां मौजूद 4 फौजियों ने कर्नल हैमर को देखकर फौरन एरिया बजा दी। जीप रुकते ही कर्नल हैमर उछलकर जीप से नीचे आ गया और गौर से टैंकर की तरफ देखने लगा। मेजर टॉम भी तेजी से जीप से कूदकर इसके नजदीक आ गया और कर्नल हैमर से कदरे पीछे रह कर चलने लगा। कर्नल हैमर ने टैंकर को चारों तरफ से घूम फिर कर और इसे जगह जगह से हाथ लगाकर देखा और फिर वो आयल टैंकर के नीचे झुक गया और नीचे गौर से टैंकर के कुल पुर्जों को देखने लगा। इसमें कितना तेल मौजूद है? कर्नल हैमर ने उठकर मेजर टॉम से मुखातिब होकर पूछा। ये हैवी लोडेड टैंकर है जनाब, इसमें 1,00,000 गैलन तेल होता है, मेजर टॉम ने जवाब दिया। इस टैंकर के तेल की सैंपल रिपोर्ट कहाँ है? कर्नल हैमर ने पूछा। मैं अभी देता हूँ जनाब, मेजर टॉम ने कहा और तेजी से जीप की तरफ बढ़ा। जीप का डैशबोर्ड खोलकर इसने एक फाइल निकाली और इसे लेकर कर्नल हैमर के पास आ गया, जो बस सतूर टैंकर की तरफ देख रहा था। ये डुप्लीकेट फाइल थी, असली फाइलें वो कर्नल हैमर के खेमे में इसकी मेज पर रखाया था। सर, मेजर टॉम ने कहा और कर्नल हैमर चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। मेजर टॉम ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल बड़े एहतराम से इसकी तरफ बढ़ा दी। कर्नल हैमर ने फाइल ली और उसे खोलकर इसमें लगा हुआ प्रिंटेड पेपर देखने लगा, जिसमें तेल का मायार, इसकी क्वांटिटी और तेल के बारे में दूसरी तमाम रिपोर्ट्स दर्ज थीं। कर्नल हैमर गौर से रिपोर्ट देख रहा था। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस टैंकर पर तुम्हारी तरह से शक हो रहा है, जैसे इस टैंकर में तेल के अलावा कुछ और भी हो। मैं जो जो इस टैंकर पर तवज्जो दे रहा हूँ, मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है, कर्नल हैमर ने फाइल मेजर टॉम को वापस देते हुए कहा। यस सर, मेरी छठी हिज भी इस टैंकर की तरफ से एक अनजाने से खतरे का काशन दे रही है, मेजर टॉम ने कहा। तो फिर क्या किया जाए? कर्नल हैमर ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म हो जनाब, मेजर टॉम ने सादा से लहजे में कहा। ये नॉवेल डेविल माइंड का बाकी हिस्सा पार्ट 8 में समाप्त फरमाएं।